नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौन पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।